जी बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद आजम खालिद।
वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर यूसुफ रजा, कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन योर एंड?
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। डॉक्टर यूसुफ, सो व्हाई दिस टॉपिक?
हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट कंसिडरिंग के हम वी ओवरडू आवर जॉब जब हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात करते हैं, एंड वी हैव सीन दैट एज अ ट्रेंड पर्टिकुलरली इन द वेस्ट, एंड वी आर सीइंग दैट मोर एंड मोर इन पाकिस्तान एज वेल, कि इतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे फोकस होता है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट होती है कि जो जिनको मसाइल नहीं भी होते वहाँ पे भी मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, एंड इट इज द स्टिग्मा इज चैलेंज्ड सो वेल दैट इट ऑलमोस्ट बिकम समथिंग ऑफ अ थिंग टू हैव। इट्स समथिंग सॉट आफ्टर, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, कि हमें मेंटल हेल्थ इलनेस है और होनी चाहिए। और वो जो एक वी हैव अ नेचुरल सेल्फ विक्टिमाइजिंग टेंडेंसी एज ह्यूमन बीइंग्स, तो एक तरह से उसको भी एक शी मिल जाती है, उसको एक ट्रिगर मिल जाता है, एक जस्टिफिकेशन मिल जाती है, एंड यू नो दैट दैट इट्स ग्लैमरस टू बी डिप्रेस्ड, इट्स ग्लैमरस टू हैव अ डायग्नोसिस, एंड सो दैट इज ए प्रॉब्लम इन एंड ऑफ इटसेल्फ। कि अगर हम सिर्फ अवेयरनेस की बात करें और इस ग्लैमराइजेशन वाले ट्रेंड को एड्रेस ना करें तो दैट्स गोइंग टू बी अनजस्ट।
बट यूसुफ, लेकिन इसमें इसका भी तो रोल है। जो रिसर्चेस हमारे जैसे साइकेट्रिस्ट ने ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स जो निकाली हैं कि जो डिप्रेस होते हैं वो असल में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो कि माशरे को बहुत गौर से देख रहे होते हैं, इस वजह से वो डिप्रेस हो जाते हैं। जो मैनिक होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, जो स्किजोफ्रेनिक होते हैं वो बहुत फिलोसॉफिकल होते हैं। तो आखिर ये सारी मिथ्स भी तो हमने ही फैलाई हैं।
ट्रू ट्रू, दैट इज ट्रू, के देर इज ए रोल ऑफ ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। के जब हम स्टिग्मा को काउंटर करने की बात करते हैं तो द पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड और आर एक्सपीरियंसिंग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, हम उनको इतनी ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में पेंट करते हैं एज इफ टू सजेस्ट के इट इज़ दी थिंग। एंड दोज मिथ्स मे नॉट ऑल बी रॉन्ग आइदर, कि उनका ट्रूथ अपनी जगह पे, द एम्पिरिकल एविडेंस टू सपोर्ट दैट अपनी जगह पे, हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ऐसा देखा भी होगा दैट देर आर पीपल हु आर एक्सपीरियंसिंग द सिम्टम्स दैट देर एक्सपीरियंसिंग और द चैलेंजेस दैट देर एक्सपीरियंसिंग प्रिसाइसली बिकॉज दे थिंक अबाउट दीज थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट। कि उनका मामले मामलात को देखने का, माशरे को देखने का तरीका बहुत मुख्तलिफ होता है, एंड उसको अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो जो मामलात हैं सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, उसमें कम्प्लीटली नॉर्मल होना भी तो एक प्रॉब्लमेटिक बात ही होगी। तो आई सी व्हाट यू आर सेइंग, आई थिंक आई एम डूइंग जस्ट दैट राइट नाउ एज आई एम स्पीकिंग, प्रमोटिंग और इन अ सेंस ग्लैमराइजिंग द इंटायर प्रॉब्लम ऑफ मेंटल हेल्थ।
और ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? अगर एक बंदा अपने आप को डिप्रेस समझ रहा है और वो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हो सकता है वो वाकई हो और उसे कोई हेल्प मिल जाए? सो व्हाई इज इट प्रॉब्लमेटिक?
लेकिन हो तो सकता है कि वो वाकई हो और उसको कोई हेल्प मिल जाए, लेकिन ऑन मल्टीपल अकाउंट्स। वन एट वन लेवल जो लोग जो जेन्युइनली एक्सपीरियंस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, इट इज एन इंसल्ट टू देयर सफरिंग इफ वी डिवेलप एज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, एंड दिस इज समथिंग दैट आई लाइक टू कॉल द गूगल सिंड्रोम एज वेल। आई डोंट नो इफ दैट्स अ टर्म और नॉट, बट आई एम थिंकिंग इट शुड बी, कि हमने गूगल किया या हमने ऑनलाइन देखा कि मेंटल हेल्थ इलनेसेस के बारे में बात हो रही है, और मेंटल हेल्थ इलनेसेस के बारे में आमतौर पे जो सिम्टम्स इलेबोरेट किए जाते हैं, उनमें से अक्सर सिम्टम्स हम सारों को किसी ना किसी लेवल तक किसी ना किसी उस पे हुए होते हैं। तो उससे ये सारा कुछ इमेजिन कर लेना कि ओए ये तो मुझे भी है, और फिर उस चीज़ को अपने ऊपर तारी कर लेना, और फिर एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, अपने एक बिलीफ पैदा कर लेना कि हाँ मैं तो हूँ डिप्रेस्ड। और जब ये बिलीफ पैदा हो जाएगा कि मैं हूँ डिप्रेस्ड, तो फिर द बिलीफ इज देन गोइंग टू गिव राइज टू द सिम्टम्स देमसेल्व्स। वो हाउ एवर दैट प्रोसेस वर्क्स, बट दैट लीड्स फॉर अ पर्सन टू डिवेलप दो सिम्टम्स विच वर्न्ट देयर टू बिगिन विद। एंड फिर इट इज गिविंग अस एज इंडिविजुअल्स ए जस्टिफिकेशन फॉर बीइंग इररिस्पॉन्सिबल, ए जस्टिफिकेशन फॉर बीइंग यू नो नॉट नॉट टेकिंग केयर ऑफ वट एवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी मे हैव इन विक्टिमाइजिंग आर सेल्व, एंड देन दैट विल गिव राइज टू जेन्युइन प्रॉब्लम्स विच विल देन गिव राइज टू एक्चुअल साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, राइट? सो वो फिर बीमारियां हैं नहीं, दे हैव बिन आइट्रोजेनिकली, यानी एक डॉक्टरों की काविशों के नतीजे में वो बीमारियां पैदा कर दी जाएंगी, एंड दैट्स प्रॉब्लमैटिक। दैट इज समथिंग दैट वी डोंट वॉन्ट टू प्रमोट। जैसे मैंने पहले कहा, जो लोग जेन्युइनली उन इश्यूज में से गुजर रहे हैं, इट्स एन इंसल्ट टू देम कि उनकी सफरिंग, और यू नो फॉर समबडी हु टुक इट, हु लर्न टू हैव दिस फ्रॉम रीडिंग सो मच अबाउट इट और हियरिंग सो मच अबाउट इट, और यू नो इट्स बाय बाय सीइंग हाउ ग्लैमराइज्ड इट इज, टेक्स दैट अपॉन देमसेल्व्स, फिर उनको जेन्युइन प्रॉब्लम्स शुरू हो सकते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी इम्पेयर हो सकती है, एंड सो ऑन।
और लेकिन जो इसकी दूसरी एक्सट्रीम है यूसुफ, वो भी तो उतनी ही ड्रास्टिक है, वो भी तो उतनी ही खतरनाक है कि उसको बिल्कुल भी उसकी तरफ कोई ध्यान ना देना, और उसको जहां पे वो सफरिंग लेजिटिमेट है उसको भी जस्ट टू ब्रश इट, वो वाला काम करना। तो ये तो दोनों एक्सट्रीम से फिर मसला है कि तो फिर ये कैसे जज किया जाए कि वेदर अ पर्सन और उसमें भी ये कैसे जज किया जाए कि ये सैड है या ये वाकई अब इसको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है फॉर डिप्रेशन लेट्स से।
आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, एंड देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू दैट। कि एज साइकाइट्रिस्ट्स, एज पीपल हु लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे बहरहाल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर मेड वर्स बाय स्टिग्मेटाइजेशन, कि वो ऐसे मसाइल जो पहले नहीं होते वो स्टिग्मा की वजह से और ज्यादा हो जाते हैं, और ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो हमारी एक एज 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 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अवेयरनेस रेस करें और स्टिग्मा के खिलाफ एक स्टैंड लें कि ये स्टिग्मेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इतना ज्यादा उसमें ना जाएं कि हम ग्लैमराइजेशन की तरफ मामले को ले जाएं और वहां से प्रॉब्लम्स को एग्जैसरबेट करना शुरू कर दें। सो द फर्स्ट स्टेप दैट आई वुड सजेस्ट एज अ बैलेंस, एंड आई वुड लाइक योर थॉट्स इन दिस एज वेल, कि हम फर्स्ट अप इन दोनों फिनोमिना की प्रेजेंस को तो आइडेंटिफाई कर दें कि ये होते हैं, दोनों चीजें माशरे में हैं, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, स्टिग्मेटाइजेशन भी है, ग्लैमराइजेशन भी है, और इन दोनों के नुकसानात हैं और ठीक ठाक नुकसानात हैं, दैट हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। नाउ फॉर अ ले पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग लाइफ एंड कम्स अक्रॉस दिस दीज अवेयरनेस कैंपेन्स और वट मेंटल इलनेस लुक्स लाइक ऑन द इंटरनेट, ऑन सोशल मीडिया, फॉर देम टू कम टू अ डिसीजन और फॉर द कम टू अ कंक्लूजन के उनको है या नहीं है, कि डू दे नीड प्रोफेशनल हेल्प, आर दे जस्ट विक्टिमाइजिंग देमसेल्व्स, आर दे यू नो शाइंग अवे फ्रॉम एन एक्चुअल प्रॉब्लम, इट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू गेट एनअदर पर्सन ओपिनियन। इट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट के फैमिली में, फ्रेंड्स में, इट डजेंट इवन हैव टू बी प्रोफेशनल हेल्प टू स्टार्ट ऑफ, इनिशियली ट्रस्टवर्दी मेंबर्स विद इन द कम्युनिटी, विद इन द सोशल सर्कल, अगर उनसे ही कॉन्वर्सेशन में यू गेट यू गेट अ फील ऑफ थिंग्स कि एक मेरा ख्याल है, एक मेरा ओपिनियन है, जो इस सारी चीज़ों को पढ़ने से, ऑब्वियसली आई एम नॉट, आई डोंट बिकम अ प्रोफेशनल बाय रीडिंग स्टफ बाय रिटन बाय प्रोफेशनल्स, लेकिन बहरहाल एक तसव्वुर बना है, तो बाउंस इट ऑफ ऑफ अदर पीपल दैट यू कैन ट्रस्ट, गेट देयर इनपुट, गेट देयर इनपुट, और अगर आपका पर्सनल ओपिनियन उनका जो रिस्पॉन्स और फीडबैक है, इफ दैट इज टेकिंग यू इन दैट डायरेक्शन, then getting a professional opinion, getting a responsible professional opinion may not be a bad idea to begin with. One other thing that I would suggest is के before you found out about depression, anxiety and all of that, आप उससे पहले अपनी जिंदगी देखें कि उसमें फंक्शनैलिटी किस लेवल पे थी, उसमें आपके रिलेशनशिप्स किस लेवल पे थे, उसमें मामलात जो आपके पर्सनल सेंस ऑफ डिस्ट्रेस था वो किस लेवल पे था, तो गेट अ गुड गेज ऑफ दैट, और वो कंपेयर करेंगे, जब मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता चलना शुरू कर दिया और पता शुरू हो गया और मैंने इंटरनेट पे देखना शुरू कर दिया और ये सारी अवेयरनेस की चीजें मेरे सामने आना शुरू हो गई, डिड दैट इम्पैक्ट माई फंक्शनैलिटी, के क्या मैं अब ज्यादा मामला खराब होना शुरू हो गए हैं, सो दैट कंपेरिजन विल ऑल्सो बी अ हेल्पफुल इंडिकेटर. व्हाट डू यू थिंक?
तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसके अलावा कुछ और कह सकता हूँ, बिकॉज आपने कह दिया ही काफी हमारे लिए. बट मैं इसमें ये वाली चीज जरूर कहूंगा कि एज अ साइकियाट्रिस्ट और कोई भी साइकोलॉजिस्ट, अगर एक उनके पास कोई बंदा प्रेजेंट होता है जो कि कोई भी इशू लेके आता है, तो इट इज ओके कि अगर आप उन्हें ये कह दें कि आपके साथ कोई इशू नहीं है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. इट विल टेक सम टाइम. आई हैव कम से कम मेरे एक्सपीरियंस में दो तीन लोग अभी मुझे फौरी याद आ रहे हैं जो कि इस तरह के मुझे कोई इशू नहीं है, आई एम डूइंग ऑल राइट, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट आई जस्ट थॉट के मुझे क्या मुझे मैं जरा अपना एक चेकअप करवा लूं कि क्या मैं ठीक हूँ. जस्ट लाइक कि मैं जरा मैंने जाना है नॉर्दर्न एरियाज में, तो मैं जाते हुए जरा अपने टायरों की हवा शवा और गाड़ी के सब कुछ चेक करवा लूं कि क्या सब कुछ ठीक काम कर रहा है. सो ये वाली जो ओवर कॉन्शियस होना है कि कहीं मेरे साथ कोई मसला तो नहीं है, ये भी तो एक, और ये इसमें इस ओवर कॉन्शियस होने में बहुत ज्यादा रोल वो जो हमारी सेल्फ हेल्प बुक्स का है, कि वो इतनी ज्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स है मार्केट में कि अगर किसी ने वो 7-8 पढ़ ली है, तो उसमें आप अपने अंदर कोई 5-7 मसले तो हर वक्त ढूंढ सकते हैं कि मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ वो मसला है, मेरे साथ वो मसला है. एंड इट्स लाइक कि आप पूरी दुनिया को एक होमोजिनस सोल्यूशन बना दें जिसमें सारे एक ही जैसे, एक ही वैलेंसी वाले लोग हों. तो ये जो ओवर कॉन्शियस होना है, ये भी हमें अब देखने को मिलता है, खासतौर पे वो जो पढ़ी लिखी है वहां.
आई रिमेम्बर, आजम आपकी बात से मुझे याद आया कि हमारी मॉर्निंग मीटिंग थी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री में, और इमरजेंसी में प्रेजेंट हुआ हुआ एक पेशेंट, और मैंने उनको मॉर्निंग मीटिंग में प्रेजेंट किया, और प्रेजेंटेशन के बाद जब डायग्नोसिस देने की बारी आती थी, हम सारी प्रेजेंटेशन केस सुनाने के बाद हम अपनी असेसमेंट और डायग्नोसिस दिया करते थे, तो मैंने अपनी डायग्नोसिस में बोला कि द पेशेंट हैज़ नो मेंटल इलनेस, और द पे देर इज़ नो डायग्नोसिस फॉर दिस पेशेंट, ही डज नॉट हैव एनी, ही डज नॉट फुलफिल एनी क्राइटेरिया. तो मुझे जो फरीद साहब की तरफ से अप्रिसिएशन मिली थी, और जो उन्होंने सराहा था कि हमारे अंदर इतनी ज्यादा टेंडेंसी है कि अब हमारे पास कोई आ गया तो हमने तो डायग्नोस करके ही छोड़ना है, वो ना करना इज सच अ बिग डील, खासतौर पे एंड ऑब्वियसली आई वाज प्रेजेंटिंग समबडी हु हैड कम टू मी इन द ईआर, इमरजेंसी के थ्रू आए थे, तो टू गेट दैट, एंड नाउ दैट वी हैव एंटर्ड इनटू प्रैक्टिस आवरसेल्व्स, वी कम टू दिस रिकॉग्निशन एंड रियलाइजेशन के वो सेल्फ हेल्प बुक्स, एंड उन्होंने तो सी दे आर गोइंग टू सेल इफ दे मेक यू बिलीव दैट दे यू हैव प्रॉब्लम्स दैट दे कैन सॉल्व, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर जॉब इज टू मेक यू बिलीव दैट यू हैव प्रॉब्लम्स, एंड बिकॉज दे आर वेरी इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन एंड इन मार्केटिंग, दे कैन मेक यू बिलीव दैट इवन इफ इट्स नॉट ट्रू. वो अपनी जगह पे, लेकिन हमारी जो ये एक DSM मेंटेलिटी है एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, जिसमें हम तमाम इंसानियत को और तमाम लोगों को किसी ना किसी डायग्नोस्टिक डब्बे में डालने वाली एक टेंडेंसी पैदा हो गई है कि इवन विद इन साइकाइट्रिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर वेयर वेटिंग फॉर कैच फ्रेजेस। कोई ये कह दे ना, कोई बंदा हमारे सामने उदास बैठा हो और बोले कि हाँ एक वक्त था मैं बहुत खुश होता, ओए बहुत खुश होता था मीनिया, क्या हो गया यार, ऐसे नहीं होता मीनिया, दैट्स नॉट व्हाट इट इज। आई मीन इन 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 द लिमिटेड इंटरेक्शन दैट वी आर गोइंग टू हैव विद पीपल, वी आर गोइंग टू लुक फॉर जस्ट दीज कैच फ्रेजेस जो जो किसी ना किसी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के साथ उनके डॉट्स कनेक्ट हो सके, एंड देन पुट द पर्सन इनटू दैट बॉक्स एंड स्टार्ट देम ऑन व्हाट एवर फार्माकोथेरेपी दैट वी हैव टू डू। तो ये डायग्नोस्टिक लेबलिंग इवन थेरेप्यूटिकली वी नो कि इट्स नॉट अंटिल एंड अनलेस वी आर डीलिंग विद वेरी सिवियर केसेस, अंटिल अनलेस इट्स यू नो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, यू नो सिवियर डिप्रेशन, ठीक है वहां पे डायग्नोस्टिक लेबल्स मेक सेंस, बट शॉर्ट ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दैट वी वर्क विद क्लिनिकली एंड प्रोफेशनली दे कैन जस्ट एज इजिली गो विदाउट अ डायग्नोस्टिक लेबल। बट सेल्फ हेल्प बुक्स वाला फिनोमिना हो, DSM मेंटेलिटी हो, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो यू नो द वे दे मार्केट देमसेल्व्स टू डॉक्टर्स एंड टू पेशेंट्स, दैट हैज लेड टू द ग्लैमराइजेशन और यू नो द यू नो मेकिंग दिस समथिंग डिजायरेबल।
सो अगर हम थोड़ी सी दूसरी लैंग्वेज यूज कर सकें तो किसी भी प्रैक्टिशनर का काम जहाँ पे ये है कि वो ट्रू पॉजिटिव्स को आइडेंटिफाई करे, वहां पे ये भी है कि वो फॉल्स पॉजिटिव्स को आइडेंटिफाई भी करे
वेरी
कि
गुड,
ये वो चीज नहीं है जो कि एक ले पर्सन समझ रहा है। और हम लोगों और यूसुफ इस पे भी थोड़ा सा अगर आप बात करेंगे, ये वाली जो चीज है जो अभी आपने सारे वर्ड्स जो आपने बोले, डिप्रेस होना, मैनिक होना, पैरानॉइड होना, एग्रेसिव होना, वी ऑल डू दैट इन आवर डेली लाइव्स, तो हम इसको कब पैथोलॉजी करार देंगे और कब इस पे किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि एक ये वाली चीज के जस्ट 2 वीक्स बैक आई सॉ समवन के मेरी एंगेजमेंट टूट गई और मैंने उसी रात आपका सेशन बुक किया, लेकिन मुझे टाइम मिला 10 दिन बाद का, लेकिन अब जब सेशन हुआ तो मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो मुझे कुछ मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कुछ वो उसकी जरूरत है, तो मैंने उसे वो यही कहा कि भाई साहब आप थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, आपके अंदर इतने, उसने कहा, मैंने कहा कि एंगेजमेंट टूटी है तो हो सकता है मैं 5-6 दिन तक जो है ना डिप्रेस हो जाऊँ, मतलब ही वॉज एंटिसिपेटिंग कि मैं शायद डिप्रेस हो जाऊँ,
उनको आपसे
तो
बात करने का वैसे दिल कर रहा
ये
होगा।
हो सकता है।
दैट्स वेरी ट्रू। सी देर आर सर्टन नॉर्मल रिएक्शंस टू सच एक्सपीरियंसेस दैट वी विल हैव इन आवर लाइफ। अगर हम इफ वी लूज अ लव्ड वन, वेदर दैट्स अ ब्रेकअप और एन एंगेजमेंट ब्रेक्स ऑफ और डिवोर्स और सेपरेशन और द डेथ ऑफ अ लव्ड वन और अ सीरियस इलनेस दैट कम्स इन द फैमिली और द पर्सन इज इन्फ्लिक्टेड, तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सैडनेस होगी और होनी चाहिए। दैट्स अ साइन ऑफ गुड हेल्थ कि अगर हमारी जिंदगी में एक इस तरह का चेंज आया है, हमने एक लॉस एक्सपीरियंस किया है और उस लॉस के नतीजे में हम उदास हुए हैं, देन दैट्स गुड। उदासी का ना होना जहाँ उदासी बनती है, दैट्स प्रॉब्लमैटिक, वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, राइट? हम उसको अगर तो वो उदासी एक आम मामूल में हमें पता है कि इस तरह की जब एंड दिस इज वी डोंट हैव टू पुट अ नंबर टू इट, हमें पता है कि लोगों को इस लेवल की लाइफ चेंज या लाइफ लॉस इन लाइफ से गुजरने में, रिकवर करने में कितनी देर लगती है डिपेंडिंग ऑन वट एवर इट इज, हमें एक आइडिया सारों को होता है। अगर वो उससे कहीं ज्यादा हो रहा है कि अब काफी अरसा हो गया लॉस को, फिर भी वो सैडनेस नहीं जा रही, फिर भी वो उदासी नहीं जा रही, और अब वो हमारी, एंड वी बीन सेइंग दिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, the line that you brought up with reference to Freud, the loss of ability to work and to love, right? So jab wo hona shuru ho gaya, then we should probably take it to a professional help to get that addressed. Otherwise, there is no need. These are challenges jo life ka hissa hai. Hum sabko udasi hoti hai, hum sabko rona aata hai, hum sabko dar lagta hai, hum sabko kabhi aisa bhi hota hai ki bhook nahi lag rahi hoti, koi baat nahi, that's fine. Haan, agar duration iski bahut zyada ho jaye aur functionality pe hame impairment aana shuru ho jaye, that's when we should probably consider seeking out professional help.
यूसुफ, जो हमने शुरू में बात की है, अगर हम उसी पे थोड़ी सी और बात करें, बट हम देखते हैं कि जो बहुत सारे जो खासतौर पे जो लोग जिनका ताल्लुक लिटरेचर से है, पोइट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जिनका ताल्लुक है, उनमें मेंटल इलनेस इट लुक्स लाइक के उनमें थोड़ी फ्रीक्वेंसी जो है, इंसिडेंस जो है वो ज्यादा है. तो क्या इनका आपस में कोई ताल्लुक भी है?
आई डू फील के देयर इज एंड वी हैव सीन एविडेंस ऑफ दिस एज वेल. देयर आर मल्टीपल रिसर्चेस, ऑल्दो उसमें कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल वी डू फाइंड एविडेंस के अ लॉट ऑफ क्रिएटिव पीपल विल हैव a greater vulnerability, a greater tendency towards mental illnesses as well. Aur uske ilawa, the other side of the story is true as well, ke in experience of mental illness or a mental health challenge, it sets the stage for you to look at the world in a different way. Or look at that side of the world that other people will not notice, and that adds to the creativity, and that contributes to how creatively or how much novelty you can bring into the world. So ye cheez, I conform to that. I do feel that does happen.
Yusuf, सो क्या हर बंदे को, जो भी बंदा डिप्रेस हो, उदास हो, क्या उसको भी फिर ये सब कुछ करना चाहिए कि अब मैं उदास हूँ, मैं शायरी शुरू कर दूँ?
अगेन, क्रिएटिविटी इज नॉट जस्ट शायरी, बट आई विल से दिस मच के देर इज एन एक्सप्रेशन दैट पोएट्री अलाउज, दैट आर्ट अलाउज, that music allows, that language in prose does not allow. Aur agar hamari jazbaat aur hamare emotions ki expression hamare mental health ke liye ek level of satisfaction ya ek level of growth hamare andar engender kar sakti hai, then it is a very good idea to have that aesthetic side of ourselves, jo hamari aesthetic dimension hoti hai as human beings, uske liye koi na koi ehtimam, koi na koi intizam karna, this is a very good idea. Routine mein bhi, we don't have to wait for us to have a neurotic break or a breakdown for us to come to that realization. And a lot of people, a breakdown such as that is a sign ke yaar tumhare andar ye salahiyat hai aur isko samne lana zaruri hai. In a lot of people, it doesn't have to be all cases of depression, but in some people that is true. So why not? Yeah, that there is so, a link there, but that's not all curative nahi hai ke bas shayari shuru kar di depression theek hogi.
ठीक है, तो हमने यूसुफ जो इसका टाइटल रखा था कि जो एक तरफ ग्लैमराइजेशन है और एक तरफ स्टिग्माटाइजेशन, क्या ऐसा नहीं है कि क्या ऐसा है कि इसमें कि इन दोनों के एक तरफ वो जो एक लिहाज से इन दोनों का कॉज वो जो एक बहुत ज्यादा उसे क्या कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ी हुई सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ पिटी वाली चीज कि अपने आप को बहुत ज्यादा जिसे अगर मैं यूज कर सकूं एक एनालॉजी के बहुत ज्यादा शीशा देखना, अपने आप को बहुत क्रिटिकली देखना कि मैं क्या हूं, और फिर उसमें ऑफ कोर्स दूसरों से कंपेयर भी करना, क्या इसमें इस चीज का भी ताल्लुक है?
That's a wonderful point. Thank you. We know for a fact के for example, Frankl gives this example के एक उनके पास patient आए who was a very wonderful violinist, बहुत जबरदस्त violin बजाते थे. और उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं सोच के एक एक कदम उठाया करूं वायलिन बजाने में, कि पहला स्टेप कौन सा होता है, दूसरा स्टेप कौन सा होता है, पहले मैं हाथ को किस तरह से रखता हूँ. एंड इज लाइक उन्होंने ये फैसला ही किया था कि वायलिन नहीं बजा पेरेंट्स. वो इतना ज्यादा हाइपर फोकस हो गए, एक ऐसी चीज जो उनकी फोकस की पेरिफरी पे थी लेट से, वो ऐसे उस फोकस के सेंटर पे आ गई कि वो काम ही नहीं वो कर पाए. और दोज ऑफ अस हु हैव लर्नड हाउ टू ड्राइव और एनी ऑफ दोज मोटर स्किल्स जो हमने अडॉप्ट की हैं, अगर हम उनके बारे में इतना ज्यादा जूम इन करके सोचना शुरू कर दें, वो एंग्जाइटी, वो टेंशन, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन स्टेज फ्राइट एज वेल, दिस इज व्हाट हैपेंस इन पब्लिक प्रेजेंटेशंस, दिस इज इन मोस्ट पब्लिक परफॉर्मेंसेस, अगर हम इस तरह करना शुरू कर देंगे तो प्रिसाइसली जो हम करना चाह रहे होंगे वो इस हाइपर फोकस की वजह से नहीं हो पाएगी. एंड दैट्स वन ऑफ द वेज दैट इमोशंस वर्क, कि अगर हम खास तौर पे इस चीज का तस्वुर अगर हम सामने रखें द वे हैप्पीनेस हाउ फ्रैंकल डिफाइन्स हैप्पीनेस, के इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ जेन्युइन परसूट ऑफ मीनिंग, कि आपकी सोशल लाइफ के अंदर, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर अगर कोई मीनिंगफुल एक्टिविटीज हो रही होंगी, कोई जेन्युइन अचीवमेंट्स हो रही होंगी, तो एज अ बाय प्रोडक्ट हैप्पीनेस आएगी. अगर हम उस बाय प्रोडक्ट को फोकल गोल बना देते हैं तो उतना ही ज्यादा इलूसिव और उतना ही ज्यादा इवेसिव हो जाती है. एंड दैट इज ट्रू नॉट जस्ट फॉर हैप्पीनेस, दैट इज ट्रू फॉर डिप्रेशन. अगर एक बंदा अपने आप को अपना सेल्फ डायग्नोसिस रोज करने रोज के हिसाब से करना शुरू हो जाए, आज मुझे उदासी हुई थी, हुई आज मुझे उदासी हुई थी, नो दैट उदासी जस्ट पुटिंग योर सेल्फ अंडर द माइक्रोस्कोप हैज मैग्निफाइड इट मोर देन व्हाट द एक्सपीरियंस एक्चुअली वाज, राइट? एंड वी हैव टू इन अ लॉट ऑफ वेज व्हेन वी आर एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आइडेंटिफाई के हाउ मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स कम मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ इनडायरेक्ट चैनल, कि हम उसको बराहे रास्त जितनी देर डिप्रेशन को पकड़ लो दोनों हाथों से और उसको झंझोड़ के ठीक करना शुरू कर दो, दैट्स प्रिसाइसली व्हाट इज गोइंग टू इंक्रीज द डिप्रेशन. एंड वी नो दैट फॉर ऑब्सेशंस एज वेल, ओसीडी के अंदर भी अगर हम जो ऑब्सेसिव सिम्टम्स हैं उसी की तैर उसी को पकड़ के उसी के अंदर जाना शुरू कर दें और उसी को और ज्यादा फोकस ऑफ अटेंशन बनाना शुरू कर दें, ऑब्सेशन को चाहिए ही ये टू गेट वर्सन, टू गेट एग्जैसरबेटेड. एंड द ग्रेटर फोकस इन लॉट ऑफ आर थेरेप्यूटिक स्ट्रैटेजीज एज वेल, कि हम द पीपल हु आर कमिंग टू अस विद दीज इमोशनल चैलेंजेस हैविंग बिकम द सेंटर ऑफ अटेंशन, इज टू ट्राई टू ब्रिंग द अदर डायमेंशंस ऑफ देयर लाइफ इन टू फोकस, ब्रिंग द रेस्ट ऑफ देयर फैमिली इन टू फोकस, ब्रिंग सोसाइटी इन टू फोकस, ब्रिंग अ हायर पर्पस और कॉज इन टू फोकस. एंड वी फाइंड दैट वेन दोज थिंग्स डू बिकम ए फोकस एज अ बाय प्रोडक्ट एज अ साइड इफेक्ट, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स में भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है. तो एज कैंपेनर्स फॉर मेंटल हेल्थ we need to also know when not to focus on mental health and when to focus on the other dimensions of the human being, all of whom there's a confluence within our emotional experience from all of these different dimensions.
और सो यूसुफ, लेकिन तो एक बहुत जो ऑब्वियस सवाल जो आपको देख रहे हैं वो पैदा होंगे कि हम क्या करें फिर और क्या ना करें, इफ यू कैन, ये जो आपने बहुत सारी वेग बातें की हैं, इनको अगर बुलेट पॉइंट्स में आप कर दें कि क्या करें और क्या ना करें, ताकि फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएं।
ठीक हो गया। देखें, हम इस चीज का, हम बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, देयर इज आई डू फील कि हमें हमेशा जब हम स्टिग्मेटाइजेशन की बात करते हैं, वी नीड टू बैलेंस दैट आउट विद आइडेंटिफाइंग द फिनोमेना ऑफ ग्लैमराइजेशन एज वेल। और लेकिन जब हम ग्लैमराइजेशन की बात करते हैं, तो वी ऑल्सो हैव टू कम बैक एंड रीफोकस एंड यू नो आइडेंटिफाई स्टिग्मेटाइजेशन एज एन इशू एज वेल। आई डोंट नो इफ वी बीन एबल टू स्पीक अबाउट दिस इन द पास्ट और नॉट, लेकिन स्टिग्मेटाइजेशन खास तौर पे हमारी सोसाइटी में काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट या एग्जैसरबेट कर देती है कि एक इंडिविजुअल के लिए फिजिकल सिम्टम्स के साथ मैनिफेस्ट करना कि उनकी डिप्रेशन फिजिकल सिम्टम्स की सूरत में सामने आ रही है, ज़्यादा काबिले कबूल है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल है एज़ कम्पेयर टू कमिंग इन द फॉर्म ऑफ ओवर्ट सैडनेस और क्राइंग और यू नो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जिनको हम कहते हैं। तो टू पुट इट इन अदर वे, कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर मोर लाइकली टू कम इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सिम्टम्स, पेन्स का ज़्यादा होना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का ज़्यादा होना, लॉस ऑफ फंक्शनिंग इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ देयर बॉडी का ज्यादा होना। और उसकी रूट क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये क्यों है हमारी सोसाइटी में ज्यादा, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, तवज्जो नहीं देगा, मसाइल का हल उस तरह से नहीं होगा। इट इज मोर लाइकली के फिजिकल सिम्टम्स को अटेंशन मिलेगी, एड्रेस किया जाएगा, नॉट दैट एनीवन डज दैट डिलिबरेटली। ये हमारे गैर शौरी तौर पे हमारी साइकी का एक तरीका होता है कि यार आई नीड हेल्प एंड आई नीड प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व। सो दैट्स हाउ मच ऑफ अ रोल स्टिग्मेटाइजेशन प्लेज इन द वर्सनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो दिस आई वांटेड टू से बिफोर वी मूव्ड ऑन। नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, और सी फर्स्ट अप वी नीड टू नो कि एक स्टिग्मेटाइजेशन होती है जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ चैलेंजेस खराब होते हैं। दूसरी चीज वी नीड टू नो कि ग्लैमराइजेशन भी होती है, कि इन आइडेंटिफाइंग कि इसको कितनी ज्यादा अटेंशन मिल रही है और कि दिस मे बी अ वे आउट, वी हैव द टेंडेंसी टू विक्टिमाइज आवरसेल्व्स एंड वी मे रिजॉर्ट टू ए डायग्नोस्टिक लेबल। एंड आई हैव एक्चुअली गॉटन दिस फ्रॉम वन ऑफ माई कोलैबोरेटर्स। ही सेड कि उनका यही था कि मुझे ADHD है। मैंने सारी काफ़ी बैक एंड फोर्थ होने के बाद जब मैं उनकी तसल्ली करा दी कि उनको ADHD नहीं है, उनका अच्छा फिर मुझे काम करना पड़ेगा अब। सो दैट इन इट सेल्फ इज बिट्रेइंग अ टेंडेंसी विद इन अस कि किस तरह से ये डायग्नोस्टिक लेबल्स हमें एक क्लीन चिट दे देते हैं। तो इन दोनों फिनोमिना की अवेयरनेस ज़रूरी है, ये दोनों की टेंडेंसी हमारे अंदर, हमारे माशरे के अंदर मौजूद है, हमारी इंडिविजुअल सेल्व्स के अंदर मौजूद है। तीसरे स्टेप पे हमें खुद से सेल्फ डायग्नोसिस को जितना भी हम, दैट्स हाउ द प्रोसेस विल स्टार्ट। अंडरस्टैंडेबली हम किसी भी चीज का स्टार्ट अपने से ही लेते हैं कि हमारा उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या ओपिनियन है, क्या कंक्लूजन है, लेकिन इट शुडंट एंड विद दैट। हमें उसको कोरोबरेट करने के लिए, उस पर फीडबैक हासिल करने के लिए, उसको यू नो एक्नॉलेज, उसको उसको कंफर्म या रिजेक्ट करने के लिए वी शुड बी ओपन टू अदर पीपल्स इनपुट, राइट? एंड दैट इनपुट कैन कम फ्रॉम रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सोर्सेज विद इन आर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। अगर डिस्ट्रेस या प्रॉब्लम का लेवल और ज्यादा है, एड्रेस नहीं हो रहा, देन वी शुड लुक टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। एंड रिस्पॉन्सिबल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स शुड रिकॉग्नाइज कि हमारा काम सिर्फ डायग्नोसिस करना नहीं है, बल्कि जहाँ पे डायग्नोसिस नहीं बनता वहाँ पे एक्सप्लिसिटली ये बताना भी जरूरी है कि कोई डायग्नोसिस नहीं है। ओके, सो नाउ वी आर रेडी टू मूव ऑन टू क्वेश्चंस आजम।
यस
सो I am going to take the seat of the journalist, and now you can become the one answering the questions. मुझे आप खाम का हॉट सीट में डाल देते हैं तो लेट्स
आप बड़े हमारे
वेरी फनी जी सो
व्हाट आर
इज
सम
आस्किंग हाँ व्हाट आर सम ऑफ द ट्रेड्स यू ट्राई डूइंग दैट अगेन डिडंट यू व्हाट आर सम ऑफ द ट्रेड्स टू आइडेंटिफाई इफ समवन हैज विक्टिमाइज्ड देमसेल्व्स
सो आई थिंक इसका जो आंसर है वो तो आप पहले दे चुके हैं कि इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होगा बट यू वुड हैव टू लुक कि वो जो अपने ऊपर जो जजमेंट है क्या वो क्या उसका कोई वारंट है या नहीं है एक चीज दूसरी चीज ये कि क्या ऐसा तो नहीं है कि द पर्सन इज इवेडिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर क्या ऐसा है कि वो जो विक्टिमाइजेशन है अपनी उसके उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं उनकी लाइफ के ऊपर अगर तो आपको ये लगता है कि ही इज गेनिंग समथिंग बट नॉट लूजिंग एनीथिंग देन यू शुड बी सस्पिशियस के उनको के क्या वो कहीं वो जो विक्टिमाइजेशन है वो डेलिब्रेट तो नहीं है ठीक है जहां तक ऐसी विक्टिमाइजेशन की बात है जो कि डेलिब्रेट ना हो और अनकॉन्शियस हो तो वहां पे फिर ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्यों हो रहा है बिकॉज देयर माइट बी समथिंग के जो कि वाकई उनका हक हो और उनको ना मिल रहा हो एंड दैट और यहाँ पे हक से मेरी मुराद जिसको हम प्राइमरी गेन्स कहते हैं दे आर मोस्टली ऑफ दोस कैटेगरी कि उनको कोई रिस्पेक्ट है अफेक्शन है लव है जो कि दूसरों से मिलना चाहिए कोई भी जो उनके रिलेशनशिप्स या उनके दिल के लोगों से उनको मिलना चाहिए लेकिन वो नहीं मिल रहा तो उस उसमें सो देर कैन नॉट बी वन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर के ये होगा तो वो होगा आपको ये सारी डोमेन्स जो है वो देखनी पड़ेगी
और मोस्ट लाइकली आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये कॉन्वर्सेशन अगर हम अपने साथ करें कि कहीं मैं अपने आप को विक्टिमाइज तो नहीं कर रहा और उसकी कोरोबोरेशन के लिए मैं दूसरों से बातचीत कर लूं लेकिन वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम पासिंग दीज जजमेंट्स अबाउट अदर पीपल आ ये देखो अपने आप को विक्टिमाइज कर रहा आई डोंट थिंक दैट्स अप्रोप्रिएट इवन वो वाली विक्टिमाइजेशन अगर किसी की तरफ से आ भी रही है तो जिस तरह आपने कहा कि एक कोई जेन्युइन नीड जो उनको डिनाई हो रही है दैट मे बी द रीजन
सो किसी और पे ये जजमेंट पास करने से पहले आपको FCPS साइकेट्री करना पड़ेगा
और उसके लिए भी वो आपको ये हक दें आके FCPS साइकेट्रिस्ट भी माशरे में रैंडमली जाके ओ देखो विक्टिमाइजर ओ देखो बॉर्डरलाइन ओ नो दिस इज अ राइट दैट यू हैव ओनली इफ समबडी गिव्स इट टू यू एंड फॉर दैट दे हैव टू पे यू एंड दे हैव टू साइन अप फॉर दैट ओके नाउ आई एम ओपनिंग माय सेल्फ अप टू योर क्लिनिकल जजमेंट गो अहेड एंड मेक इट ओके ऑलराइट अनाया is asking Azam grief or depression mein kya fark hai is it just the level of functionality
so yes functionality bahut important hai lekin functionality jo hai wo in itself effect nahi hoti wo effect hoti hai ki uski severity kya hai to ek to ke grief is a normal expression of any loss aur wo hona bhi chahiye agar wo na ho to wo abnormal hai और मैंने कहा है एनी लॉस तो वो कोई भी मुझे मेरे फोन के गुम होने का ग्रीफ भी हो सकता है बेशक वो बहुत सस्ता है लेकिन फिर भी तो बट लेकिन एक तो के इंटेंसिटी जो है डिप्रेशन की वो ग्रीफ से कहीं ज्यादा होगी और दूसरा उसके के और ग्रीफ एटलीस्ट इन इट्स इनिशियल स्टेजेस जहाँ पे वो सबसे ज्यादा होता है वहां पे वो डिप्रेशन को मिमिक कर सकता है लेकिन ग्रीफ सबसाइड्स एंड द पर्सन रिटर्न्स टू हिज फंक्शनैलिटी लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं होगा उसमें वो परसिस्टेंट होगा उसकी सेवेरिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी
और जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग टू द डिस्क्रिप्शन दैट यू गिव ग्रीफ के अंदर जो लॉस object that is lost or the loved one that is lost wo identification kafi clear cut hogi ki bahut hame nazar aa raha hoga acha ye azam ka phone gum ho gaya jitna bhi sasta tha lekin uske natije mein ye grief reaction hua बट डिप्रेशन में वी मे नॉट बी एबल टू मेक दैट कनेक्शन,
हाँ, बट
सो
लेकिन
दैट
यूसुफ किसी के भी लव्ड वन की डेथ होने के बाद वो डिप्रेशन भी हो सकता है, इवन इफ दैट इज विजिबल, लेकिन हम उसको वो जो ग्रीफ का वो जो नॉर्मल टाइम जो हम कहते हैं उसको 2 हफ्ते दिए बगैर हम उसको डिप्रेशन डायग्नोज नहीं कर सकते।
बिल्कुल ठीक है. ओके सो अनाया, इट्स नॉट जस्ट द लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी, इट इज द एसोसिएशन. ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और टाइम पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. ओके, महनूर इज आस्किंग आजम, लॉस ऑफ एबिलिटी टू एक्सप्रेस लव एंड केयर इज नॉर्मल, राइट?
मानो सीइंग योर डीपी फॉर अ सर्जन इट इज परफेक्टली नॉर्मल, बट लॉस ऑफ एबिलिटी टू एक्सप्रेस लव एंड केयर इज नॉर्मल, नो इट इज नॉट नॉर्मल, बिकॉज लव एंड केयर और इसकी तरह और भी बहुत सारी चीजें ये हमारे ह्यूमन फंक्शंस हैं। इट इज जस्ट लाइक कि अगर मेरी गाड़ी 3 गियर लगा रही है और चौथा नहीं लगा रही तो मैं कहूँ चलो 3 पे गाड़ी तो चल रही है, सो इज इट नॉर्मल? नो इट्स नॉट नॉर्मल, क्योंकि टू फॉर एनी ह्यूमन अगर उसको अपने कंप्लीटली अपना पोटेंशियल उसका एक्सप्रेस नहीं हो सकता जब तक कि उसके ये तमाम फीचर जो हैं वो सही तरीके से, उसके तमाम गियर सही तरीके से काम नहीं कर रहा। एंड एक्स लव एंड केयर इज वन ऑफ मैनी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गियर्स ऑफ एनी ह्यूमन।
हाँ बिल्कुल ठीक है. एंड जैसे आजम ने मजाकन ही सही, लेकिन बिल्कुल दैट्स एन एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ व्हाट गोज ऑन इन आवर सोसाइटी. देर आर सर्टेन प्रोफेशंस दैट विल दैट आर डिजाइंड ऑलमोस्ट टू टेक दैट अवे फ्रॉम अस.
बट ऑन अ सीरियस नोट, लेकिन उनके अपने प्रोफेशन के लिए वो जरूरी भी है। अगर एक सर्जन उस तरह उस मानी में केयरिंग होना शुरू हो जाए कि किसी को मेरे के कोई मैं किसी को कुछ चोट ना पहुंचा दूं तो वो तो काम ही नहीं कर सकता। तो
फिर
मानो
वो
अ सर्टेन टाइप ऑफ रूथलेसनेस इज नेसेसरी फॉर यू।
ठीक हो गया. दैट्स ऑल राइट. सो मूविंग राइट अलोंग, आजम, वुड यू लाइक टू इज दिस देयर? ओके, आई थिंक वी आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, डोंट यू थिंक? आजम कोई रह तो नहीं गया आपके लिए वो?
एक जो मानूर से व्हाट आर फ्यू थिंग्स,
ये वाला? ओके.
जी ये आपने जवाब सुना।
A few things, a person having a fearful, oh my God, fearful avoidant attachment style should work on to improve. The relationship is maybe between a mother and daughter or anyone in a social space. सबसे
सो
पहले जी
उसने अभी अभी मैरी एंजवर्थ पढ़ के जो है ना आपसे सवाल पूछा।
ऐसे मेरा वाइब हो रहा है. आई वुड बी वेरी कॉशियस देयर हुस्ना इन बीइंग यू नो बीइंग सो डिफिनिटिव इन सेइंग कि मेरा ये फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है. आई वुड नॉट इवन एज अ स्पेशलिस्ट, एज अ साइकाइट्रिस्ट और अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई विल नॉट मेक दैट जजमेंट फॉर माई सेल्फ और अबाउट माई सेल्फ. आई वुड टेक इट टू अनदर प्रोफेशनल. मैं आजम से सेशन लूंगा, आजम से बात करूंगा, उससे बोलूंगा यार मुझे ये लग रहा है और उसकी ये वजह है. एंड देन आई वुड आस्क हिम टू टेल मी इज माई सस्पिशन करेक्ट और नॉट करेक्ट. आई वुडेंट सेल्फ डायग्नोज इवन एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. आई वुड नॉट सेल्फ डायग्नोज. आई वुड ऑलवेज फॉल बैक टू अनदर प्रोफेशनल. एंड देन वंस दे कंफर्म और डिसकन्फर्म और इफ इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अनदर प्रॉब्लम देन आई विल प्रोसीड फ्रॉम देयर. मेक सेंस? आई होप दैट हेल्प्स आंसर योर क्वेश्चन.
यूसुफ सिर्फ एक चीज, जी ये वाला
How safe is it to do a diagnosis? I think I will say it as many times as you'd want me to say it. do not put labels to yourself. Do not attach labels to yourself. Even I would implore mental health professionals, most of the people that you're dealing with probably don't require a label or a diagnostic category either. A very small percentage does. Right? जब हम किसी को डायग्नोस्टिक डब्बे में डाल देते हैं तो हम उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लाइफ, उनकी मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ व्हाट हैज नॉट कम इन फ्रंट ऑफ अस, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसका ख्याल नहीं रखते. वो लेबल जब किसी के साथ लग जाता है, हमें ये पता है कि पेशेंट्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया को फिजिकल हेल्प, मेडिकल हेल्प नहीं मिलती एडिक्वेटली सिंपली बिकॉज ऑफ द लेबल. जब वो एक फिजिशियन के पास जाते हैं, चाहे वो यूरोप में हो या अमेरिका में हो, दिस इज एम्पिरिकल एविडेंस फ्रॉम अक्रॉस द बोर्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेबल उनको उनके सारे सिम्टम्स फिर उसी में एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं. इवन जो उनके जेन्युइन फिजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहे होते हैं, दे आर नॉट एडिक्वेटली एक्सप्रेस्ड. सो जस्ट टू यूज दैट एज एन एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग कि हम हु हैज स्किज़ोफ्रेनिया शुडंट बी कॉल्ड और शुडंट बी गिवन दैट डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. आई एम सेइंग कि हमें हत्तल इम्कान अवॉइड करना चाहिए कि मैं फिर अगर एक बंदे को कर दूंगा ना, ये तो डिप्रेस्ड है, ये तो है ही बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिर मेरी उसके साथ जितनी सब्सिक्वेंट इंटरेक्शंस हैं वो इसके अलावा आगे पीछे किसी चीज को देख ही नहीं सकेंगी. एंड उनको जब तक मैं देख नहीं सकूंगा तो आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू हेल्प देम बिकम मोर देन दैट डायग्नोस्टिक लेबल. रादर आई एम फैसिलिटेटिंग इन रिड्यूसिंग देयर लाइफ टू दैट एंड जस्ट दैट. एंड वी हैव सीन द डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट इन आवर प्रैक्टिस. वी डोंट वांट टू डू दैट. All right, so I think we're done for today, Azam. We call it a wrap. Thank you for all the wonderful questions, people. And if you, and I think there's a couple that we did leave out, but feel free to reach out to us in our inboxes and we will see how best we can help you out with those questions. And with this, our campaign for mental health awareness concludes, finally. ठीक हो गया. Now what we are going with this campaign was an initiative of Telepsychiatry Pakistan, जो के मेरी अदम मौजूदगी में, मेरी बहुत मिनिमल इन्वॉल्वमेंट और आजम की बहुत मिनिमल इन्वॉल्वमेंट के बावजूद हमारी टीम ने, हमारे मेंटल हेल्थ कोचेज ने, हमारी मीडिया टीम ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए आप लोगों के साथ कंटेंट भी शेयर किया. वी हैड टॉक्स इन डिफरेंट प्लेसेस विद डिफरेंट ऑडियंसेस, स्पोक अबाउट मेंटल हेल्थ, रेज्ड अवेयरनेस एज बेस्ट एज वी कुड. सो फुल क्रेडिट टू द टीम फॉर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. आई वुडंट, आई मीन देयर इज सो मच दैट वुड नॉट हैव बीन प्रैक्टिकली, हम लोग तो वी डिडंट इवन नो व्हाट वाज गोइंग ऑन टू बी ऑनेस्ट. So much was going on. Dr. Samia Iqbal, Dr. Omar, they've been going around giving talks. Afifa, Fatima, Dr. Mariam Javed, despite a lot of personal चलें ठीक है, ओके, तो
ओके,
थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज, अमन
अल्लाह
सलाम।
हाफिज़।